नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज भारत के 5 दिन के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। यमन के दक्षिणी तट पर एक जहाज के डूबने से 68 इथियोपियाई प्रवासियों की मौत, 74 लापता। पूर्वी मेक्सिको के वेराक्रूज राज्य में टक्सपेन जेल में कैदियों के बीच घातक संघर्ष में 7 मरे, 11 घायल। और क्रिकेट में लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज दोपहर बाद भारत की 5 दिन के सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी लुई अर्नेटा मार्कोस और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद श्री मार्कोस की ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान श्री मार्कोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का भी श्री मार्कोस से भेंट करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति मार्कोस फिलीपींस लौटने से पहले बेंगलुरु भी जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में एक मजबूत साझेदारी विकसित की है। दोनों देश क्षेत्रीय स्तर पर भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें आसियान के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है। फिलीपींस के साथ भारत के संबंध एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण का एक अभिन्न स्तंभ है। राष्ट्रपति मार्कोस की यह राजकीय यात्रा भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यह यात्रा दोनों नेताओं के लिए भविष्य के द्विपक्षीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का एक अवसर है। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले भारत को एक मूल्यवान मित्र बताया है। राष्ट्रपति ने आज अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य, समुद्री हित और क्षेत्रीय शांति भारत के साथ गहन, व्यापक और अधिक सार्थक द्विपक्षीय सहयोग की नींव है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक संतुलित और स्थिर विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कांडला में बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र के चालू होने को स्थिरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण की ये परियोजना देश के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है और हमारे नेट जीरो दृष्टिकोण को बल प्रदान करता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटन की गई यह परियोजना हरित बंदरगाह अवसंरचना में भारत की प्रगति को दर्शाती है। मात्र 4 महीनों में निर्मित यह संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2025 में घोषित 10 मेगावाट की एक बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना का पहला मॉड्यूल है। 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ यह सुविधा भारत के नेट जीरो यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दीनदयाल बंदरगाह मेगावाट स्तर के हरित हाइड्रोजन संयंत्र को संचालन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों द्वारा विकसित यह संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक मानक स्थापित करता है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकार इस संगीत संध्या में प्रस्तुति देंगे। एक रिपोर्ट।
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित सप्तसुर सात राष्ट्र एक राग नामक इस समारोह में 7 बिम्स्टेक देशों की विशिष्ट संगीत परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। यह समारोह बिम्स्टेक सहयोग में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर है। इस सांस्कृतिक पहल की शुरुआत इस वर्ष अप्रैल में थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह की मेजबानी की पुष्टि से हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रम की इस असाधारण संध्या का आनंद लेने के लिए सभी क्षेत्रों के दर्शक निःशुल्क शामिल हो सकते हैं। सीटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है तथा मेहमानों से अनुरोध किया गया है कि शाम 6 बजे तक अपनी सीट पर पहुंच जाएं। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
भारत का स्मार्टफोन निर्यात वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 58% बढ़कर 7 अरब 72 करोड़ डॉलर हो गया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस बढ़त में सर्वाधिक योगदान एप्पल का रहा है, जिसने अपने अनुबंधित निर्माताओं के माध्यम से 6 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन निर्यात किए। ये पिछले वर्ष की तुलना में 82% अधिक है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। यमन के दक्षिणी तट पर एक नाव के डूबने से कम 68 इथियोपियाई प्रवासियों की मौत हो गई है और 74 लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के अनुसार 154 लोगों को ले जा रही ये नाव अबियान प्रांत के पास पलट गई, जहां से शव बहकर तट पर आ गए। घटना में केवल 12 लोग ही बच पाए हैं। इस तरह की घटनाएं खाड़ी क्षेत्र में बेहतर अवसरों की तलाश में प्रवासियों द्वारा की जाने वाली जोखिम भरी यात्राओं को बतलाती है। मेक्सिको के पूर्वी प्रांत वेराक्रूज की टक्सपेन जेल में हुए झड़प में 7 कैदियों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ये झड़प कथित तौर पर तब हुई जब कैदियों के एक आपराधिक समूह के सदस्यों द्वारा जबरन वसूली और दुर्व्यवहार का विरोध किया गया। क्षमता से ज्यादा 778 कैदियों वाली इस जेल में व्यापक व्यवस्थागत समस्याएं हैं। मेक्सिको के मानवाधिकार आयोग की 2012 की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि मेक्सिको की 60% जेलें गिरोहों या ड्रग कार्टेल के नियंत्रण में हैं। रूसी विज्ञान अकादमी के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की सौर खगोल विज्ञान प्रयोगशाला ने कल सूर्य में M2 स्तर की सौर ज्वाला का पता लगाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ज्वाला का स्थान सूर्य पृथ्वी रेखा पर होने के बावजूद वर्तमान में पृथ्वी पर सौर पदार्थ के प्रभाव के कोई संकेत नहीं है। सौर ज्वालाओं को उनकी प्रबलता के आधार पर A, B, C, M और X श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से X श्रेणी की ज्वालाएं सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। जाने माने बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के प्रतिबंधों के बावजूद बलूचिस्तान 11 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान किसी भी अवैधानिक निर्देश का पालन करने के लिए कानूनी या नैतिक रूप से बाध्य नहीं है और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बलूचों का मूल अधिकार है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
क्रिकेट में ओवल में खेला जा रहा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। मैच के 5वें दिन आज मेजबान इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन से आगे खेलेगा। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन और चाहिए, जबकि भारत को जीत दर्ज करके सीरीज बराबर करने के लिए बाकी बचे 4 विकेट लेने होंगे। इससे पहले 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की अगुवाई हैरी ब्रुक और जो रूट के शानदार शतकों ने की। हालांकि भारत ने कल के दिन अंत में बेहतर गेंदबाजी करते हुए शानदार वापसी की। भारतीय टीम ने सिर्फ 36 रन देकर तेजी से 3 विकेट चटकाए, जिससे मैच में वापसी की उम्मीदें फिर से जग गई हैं। भारत ने अपनी दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के शानदार 118 रन और आकाशदीप रविंद्र जडेजा तथा वॉशिंगटन सुंदर के महत्वपूर्ण अर्धशतकों की बदौलत 396 रनों का प्रभावशाली स्कोर खड़ा किया। भारत फिलहाल 5 मैचों की श्रृंखला में 1-2 से पीछे है। इसके अलावा भारतीय एथलीट और पूर्व एशियाई चैंपियन अब्दुल्ला अबू बकर ने कल रात कजाकिस्तान के अल्माटी में कोसानोव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीत लिया है। अबू बकर ने 16.08 मीटर की छलांग लगाकर ये जीत हासिल की।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज भारत के 5 दिन के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। यमन के दक्षिणी तट पर एक जहाज के डूबने से 68 इथियोपियाई प्रवासियों की मौत, 74 लापता। पूर्वी मेक्सिको के वेराक्रूज राज्य में टक्सपेन जेल में कैदियों के बीच घातक संघर्ष में 7 मरे 11 घायल। और क्रिकेट में लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।